लोगों के नेता के रूप में ही उभर गए,
अच्छा, तो ये स्वाभाविक रूप से एक लोकमान्य के रूप में
माओवादी
जाने
रूप में
लगे।
उभर गई।
अच्छा
दूसरा, अभी आपने जो बात की उनके सेडिशन के केस की,
जी
तो लोगों को शायद पता ना हो, इस माध्यम से पता चले
जी
कि लोकमान्य तिलक के सेडिशन के खटले में उनकी पैरवी किसने की थी, तो बैरिस्टर जीना ने।
अच्छा,
बैरिस्टर जीना तिलक के बहुत बड़े अनुयायी और भक्त थे उस जमाने में, और ये जीना जिन्होंने राजद्रोह के खटले में तिलक की पैरवी की थी, तो जो जज था उसको जब सेंड ऑफ का बार में मौका आया तो बार काउंसिल में एक नोट घुमाई गई कि भाई इन्हें सेंड ऑफ देना है।
अच्छा,
तो इट वाज बैरिस्टर जीना कि जिन्होंने अपना डिसेंट नोट किया कि नहीं, इस आदमी ने तिलक को ये शिक्षा दी है, मैं इसके सेंड ऑफ में नहीं आऊंगा।
अच्छा, मैंने सुना है कि तिलक जी को बर्मा के जेल में भी काफी समय रखा गया था।
हाँ, मंडाले
मंडाले, वहाँ
जी।
कब की बात है और क्यों भेजा गया था वहाँ?
यही सेडिशन केस।
अच्छा,
हाँ,
मतलब सरकार को जब भी लगता था कि इनसे कोई खतरा महसूस होता था लोकमान्य तिलक
ने कहता था कि जो जो लोग पत्र चलाते थे,
जी
न्यूज़पेपर चलाते थे, तो ये ब्रिटिशों का जो कानून बना था प्रेस एक्ट,
जी
तो उसमें कभी भी न्यूज़पेपर बंद हो जाता था और आने के बाद फिर शुरू हो जाता था। अच्छा, उन्होंने जैसे उनका राजनीति में एक बहुत फंडामेंटल पायाभूत योगदान है, उतना ही भारतीय पत्रकारिता में केसरी का योगदान है।
जी, केसरी भी और द मराठा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग्रेजी में।
मराठा ट्रस्ट, वो ट्रस्ट का नाम ही केसरी मराठा ट्रस्ट था।
अच्छा,
केसरी जो है ये भारतीय पत्रकारिता का एक फेस बन गया, चेहरा बन गया,
बिल्कुल सच बात है,
बन गया, क्योंकि साम्राज्यशाही का विरोध का वो मुखपत्र हो गया था, लोगों की वकीली का मुखपत्र हो गया था, राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण का मुखपत्र हो गया था।
अच्छा डॉक्टर साहब, तिलक जिस स्वराज्य की बात करते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जब कहते हैं, तो स्वराज्य से उनका उद्देश्य या उनकी सोच या चिंतन क्या है उसको लेकर?
अगर अपने को तिलक के स्वराज की पूरी सोच और पूरा चिंतन समझना है तो हमें गांधी समझना होगा।
अच्छा,
क्योंकि तिलक को स्वराज्य की घोषणा करने के बाद तिलक के लाइफ टाइम में इतना अवसर नहीं मिला, ये पूरे स्वराज्य को डिफाइन करने का और उसका प्रत्यक्ष कृति में और वर्तनी में और प्रोग्राम में, एक्शन प्रोग्राम में रूपांतर करने का काम गांधी जी ने किया।
अच्छा,
हाँ,
तो गांधी के चिंतन के कौन से महत्वपूर्ण बिंदु या मुख्य बिंदु है जिनको लेकर हम स्वराज्य की झलक उसमें देख सकते हैं?
स्वराज्य का मतलब गांधी ये मानते हैं कि स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है
जी,
स्वराज का मतलब है कि मैं मेरे विवेक से राष्ट्र के कानून जो है वो कम से कम बनते चले जाए।
अच्छा,
जेल्स की और कानून की जरूरत ही ना पड़े, जैसे कार्ल मार्क्स बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी की, वो स्वराज्य चाहते थे और स्वराज का रूपांतर सुराज्य में चाहते थे, और उनके राम राज्य की कल्पना ये थी कि स्वराज का मतलब है कि जिसमें कानून कम से कम हो, लोगों का वर्तन ही ऐसा हो कि कानून से समाज नहीं चले, विवेक और नैतिकता के आधार पर चले
जी।
तो व्यक्ति ही ऐसी बने कि व्यक्ति अपना खुद की जो स्वतंत्रता है, अपनी जो मुक्ति है, ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक सीमित बन के रहेगी, सामाजिक मुक्ति, सांस्कृतिक मुक्ति और मेरे अंतरात्मा की मुक्ति, मेरे आत्मा की मुक्ति और मेरा मैं स्व से जुड़ जाना, ये जो स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात गांधी ने आगे कही,
बिल्कुल
वो इतनी व्यापक थी कि हम लोग उसको आज तक नहीं समझ पाए।
लेकिन मुझे लगता है कि जैसे देश को आजादी मिली उसके बाद हम बाकी सारे चिंतन या उसकी गहराई और गहनता और विस्तार को भूल गए, हम सिर्फ
हमने तो राष्ट्र निर्माण का कार्य ही स्थगित हो गया ना।
जी जी, सिर्फ हम राजनीतिक स्वतंत्रता के हिसाब से अपने आप को संतुष्ट मानकर आगे बढ़ चले।
हम अपने ग्राम पंचायतों में, जिला परिषदों में, अपनी अपनी कुर्सियों में, अपनी सत्ता के संघर्ष में, अपने लाभों में हम इतने गुंग हो गए कि हमको राष्ट्र से, भाषिक एकता से, भाषिक संवार से, राष्ट्रीय ऐक्य से, सामाजिक ऐक्य से कोई लेन देन ही नहीं बची। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी, अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
जी,
ये इनके बाद में तो राष्ट्र निर्माण का करीब करीब अपना एजेंडा स्थगित ही हो गया है।
सच बात है।
जयप्रकाश नारायण के माध्यम से, संपूर्ण क्रांति के माध्यम से थोड़ा बहुत आगे बढ़ा था,
लेकिन उसका भी कोई बहुत मजबूत आधार नहीं मिला देश में,
नहीं बना।
अच्छा, ये तो स्वराज की बात हमने की है, लेकिन देखिए जब लाल, बाल और पाल तीनों का जिक्र आता है तो जो स्वदेशी आंदोलन था 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, जो वाइसर ऑफ इंडिया थे उस समय, तो उसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। और 1906 में मैंने सुना है कि पैसिव रेजिस्टेंस की भी शुरुआत जो है वो तिलक जी ने और इन लोगों ने की थी।
प्रतियोगी सहकारिता, ये लोकमान्य तिलक की देन है, पैसिव रेजिस्टेंस। गांधी ने उसका रूपांतर सत्याग्रह में किया। गांधी ये पूरा विस्तार है लोकमान्य ने तिलक के 1920 में गुजर जाने के बाद
जी
जो गांधी युग शुरू होता है
बिल्कुल,
और तिलक ने जो जो चीजें रखी उसको जो एक संस्थात्मक रूप देना है, उसे प्रत्यक्ष लोगों के जीवनी में वर्तनी में लाना है, उसको प्रत्यक्ष कृति में उतारना है, ये पूरा काम गांधी ने किया है आगे
जी। इनका बहुत ही विख्यात एक नारा जो है स्वराज्य माझा जन्मसिद्ध हक का है, मतलब स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किस दौर में उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा था?
ये जो उन्होंने लोगों के संगठन का माहौल शुरू किया था
जी,
लोगों में राष्ट्र चेतना के निर्माण का, तब जो अलग अलग स्पीचेस होते थे
जी,
और ये बहुत पहले का है नारा, मतलब लोकमान्य तिलक ये लोकमान्य होने के पहले का नारा है।
अच्छा।
हाँ, ये लोगों में राष्ट्र चेतना निर्माण करने का जो पहला प्रोग्राम रहा वहीं से शुरू होता है उनका।
अच्छा।
ये केसरी को जब उन्होंने राजकीय मुक्ति के लिए पत्रकारिता क्या होती है इसका जो मॉडल दिया
जी,
तो ये पूरी एक स्कीम है और कई चीजें उस स्कीम का हिस्सा है। आपने जो इसकी बात की बंगाल के डिवीजन की
जी,
तो भारत में बंगाल का डिवीजन ये इतनी अहम घटना थी, दो घटनाएं बहुत अहम थी
जी,
एक अमृतसर में जो हुआ
जलियांवाला बाग का,
जलियांवाला बाग और बंगाल का पार्टीशन, ये राजकीय चेतना निर्माण के ये दो बहुत प्रमुख बिंदु थे कि जहां से भारत भर एक राष्ट्रीय चेतना, राजकीय चेतना और संघर्ष की एक चेतना का निर्माण शुरू हुआ तो, और भगत सिंह फांसी जाने के बाद
जी जी बिल्कुल,
इसमें और ज्यादा लोग जो जुड़ते चले गए, लाला लजपत राय, भगत सिंह जो उठे, लजपत राय को ऊपर में जो अत्याचार हुए उससे उठे
बिल्कुल,
और भगत सिंह के फांसी के बाद में जो माहौल बनता चला गया, ये सब कड़ियां जोड़कर इतिहास को देखना सभी लोगों की, तब जाके हमें एक होलिस्टिक नजरिया दिखता है फ्रीडम मूवमेंट का।
अच्छा डॉक्टर साहब, लोकमान्य तिलक जो है मैंने चर्चा में कहीं सुना पढ़ा भी इसके बारे में कि जो भारत की बहुत ही गौरवशाली वैदिक परंपरा है उससे बहुत प्रभावित थे या उसके बारे में उससे बहुत प्रेरणा पाते थे, ये किस रूप
में? प्रेरणा क्या, उनका सिद्धांत ही था, उन्होंने जो लिखा ना आर्कटिक होम इन वेदास, एक पैन आर्यिज्म जो था, अब उसमें लिंग्विस्टिकली भी उसको बहुत सारे आधार है, अगर हम लिंग्विस्टिक्स में जाए तो इंडो ईरानियन, इंडो आर्यन, इंडो ग्रीक, ऐसे कई लैंग्वेजेस के रूट्स हमको मिलते हैं
जी,
तो आर्कटिक होम इन वेदास ये तो उनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ रहा
जी, बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ।
अब उनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा तिलक जी का, कि तिलक के पहले राजनीति की लोगों तक चर्चा नहीं होती थी और लोग राजनीति का हिस्सा नहीं होते थे,
जो आम जनता वो उसका हिस्सा नहीं,
जो आम जनता और राजनीति का रिश्ता नहीं जुड़ा था
जी,
तो उन्होंने सोच की पूरी धारा ही बदल दी। उनकी जो चतुर्सूत्र थी स्वदेशी थी, जिसमें स्वभाषा थी, भारतीय भाषाओं का एक अहम अस्मिता और प्रतिष्ठा का जागरण था, जिसमें भारतीय उद्योगों की परिकल्पना थी और उसमें से कई उद्योग निकले जो आज भी जीवित हैं,
जिसकी
प्रेरणा से जो शुरू हुए
जी,
एक जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो माहौल उन्होंने बनाया अपने खुद के देशी उद्योग के नाम से
बिल्कुल,
और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, ये उनके स्वदेशी के चार अंग हैं
जी।
स्वराज तब आएगा जब अपनी भाषा से आप कम्युनिकेट होगे, आपके पास कुछ पैसा आएगा, आप मूवमेंट के लिए कुछ दे पाओगे, आप अपनी भाषा से कुछ सीखकर तैयार हो पाओगे, तब जाके स्वराज के काबिल हो जाओगे।
तो
इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है, इसका मतलब ऐसा है कि मेरी भाषा मेरा जन्मसिद्ध हक है, मेरा उद्योग का स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध हक है, मेरा शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध हक है, तो ये एक जन्मसिद्ध हक में पैदाइशी अधिकार में
जी
कई अधिकारों की परिकल्पना है
जी। सच बात है, क्योंकि स्वराज का मतलब ब्रिटिश राज की जगह अपना राज, और उस राज्य में इतने सारे जो पहलू आपने, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, विज्ञान हो, हर चीज हमारी अपनी हो, विदेशी की जगह हमारे स्वदेशी चीजें हो।
अच्छा, लिपि के बारे में भी जैसे गांधी जी ने सोचा, विनोबा जी ने सोचा
जी,
नेताजी ने भी सोचा, सुभाष चंद्र बोस ने
बिल्कुल,
वैसे तिलक ने भी एक बात सोची थी कि गुजराती बंगाली सरकी जो भाषाएं हैं वो देवनागरी में लिखी जाए।
अच्छा।
अच्छा, इसके पीछे सोच क्या थी, जैसे विनोबा जी कहते थे कि भारतीय भाषा अगर देवनागरी में लिपि में लिखी गई तो भारतीय भाषाओं के आपसी संवाद के 50% तो तकलीफें दूर ही हो जाएगी।
जी सच बात है, और इसका हमें प्रत्यक्ष प्रमाण तो मिलता ही है
जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आप देखो इटली में ग्रामची ये चाहता था कि जो बुद्धिवंत है, विचारवंत है, कलावंत है, पत्रकार है, चित्रकार है, उसी के अंदर में ऐसा व्यक्ति निर्माण हो कि जो किसान, मजदूर, कष्ट करने वाला श्रमिक और बुद्धिवंत, विचारवंत, ये सभी का एक मिश्रण होने वाला व्यक्ति, ये ग्रामची की आधुनिक व्यक्ति की कल्पना थी। अब देखो लोकमान्य तिलक भी एक ही वक्त बुद्धिजीवी, किसान, श्रमिक, इन सब लोगों को जोड़ रहे थे और इन सभी को राजनीतिक भूमिका निभाना होगा, इसलिए फिर वो गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती और ये कई चीजें जो उभार रहे थे लोगों को जोड़ने के लिए, तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सभी घटक, सभी पहलू, ये पहली बार सोचने वाला ये पहला नेता था। और उस वक्त वो ये कहते थे कि सरकारी अधिकारी और धर्माधिकारी जो धर्म के ठेकेदार है, सबसे ज्यादा अगर ग्रंथकारों को, लेखक को और कलम को अगर खतरा है तो इन लोगों से है।
क्यों ऐसा क्यों?
उस वक्त सरकारी अधिकारी ब्रिटिश थे
जी,
और धर्माधिकारी जो थे उन्होंने तो धर्म पूरा निगल लिया था, इसीलिए तो सुधारक पैदा हो गए थे।
बिल्कुल, देखिए इसीलिए अब 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि होती है और ये 9वीं पुण्यतिथि हमने पिछले 1 अगस्त को, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया, उसके इसी संदर्भ में ये चर्चा भी आपसे हो सकी और बहुत ही प्रेरक चर्चा ये डॉक्टर साहब रही है आपसे। हमें बहुत सारी चीजें शायद देखिए स्कूल की शिक्षा में या बाद में भी हमें उतनी पढ़ाई नहीं गई और हमने अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं की ज्यादा जानने की। ये हम अपने साथ एक ज्यादती कर रहे हैं, अपने राष्ट्र और अपने समाज और स्वयं के साथ। तो मुझे लगता है कि आपकी इस बातचीत से निश्चित रूप से
एक बात और जोड़ दूं मैं,
जरूर
उनकी पर्सनालिटी का और आकलन,
बिल्कुल
डिफरेंशियल कैलकुलस पर उनका एक किताब है और कितनी चीजें हैं, ओरायन है, आर्टिक होम इन वेदास है, गीता रहस्य है, जियोलॉजी पे लिखा है,
अच्छा
भूसार शास्त्र,
इसका उन्होंने वैसे तो कभी अध्ययन नहीं किया, अलग से स्वाध्याय से लिखा इन्होंने।
नहीं, बहुत जबरदस्त विद्वान थे, बहुत जबरदस्त पंडित थे, धर्म कारण, तत्वज्ञान, ज्योतिष,
हाँ वो तो था,
बिल्कुल, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, लेखन, भाषा, पत्रकारिता
जी।
और भारतीय विद्वान की जो परिकल्पना है ना, वो यही है, ये स्पेशलाइजेशन वाली वेस्टर्न कल्पना नहीं है यहाँ के कवि की या लेखक की। एक ही आदमी होलिस्टिक होता है जीवन के संदर्भ में और सभी विधाओं का उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है अगर वो प्रयास करे।
तो तिलक इस मामले में एक हमारे सामने बहुत बड़ा प्रमाण है इस रूप में भी। दरअसल डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार आपका कि इतनी प्रेरक बातचीत आपके माध्यम से हम तक पहुंची है और लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व के कितने सारे आयाम इस संक्षिप्त सी बात से निकल कर आए हैं, इसके लिए सचमुच हम अपने सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
मैं भी आपका और श्रोताओं का बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे उन तक पहुँचाया
जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब,
धन्यवाद।
श्रोताओं, बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक और अलग दृष्टि से अगर हम चाहें बात करना, क्योंकि उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू हैं और मुझे लगता है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि उन तमाम आयामों को हम जान सके। तिलक को जानने का मतलब होता है कि अपनी भारत की जो आध्यात्म है, दर्शन है, चिंतन है, राजनीतिक परिदृश्य है, संस्कृति है, उन सबको जानना, उसकी विरासत से परिचित होना या उस विरासत को कहीं ना कहीं उससे जुड़ना हम सबके लिए। इस समय विजय सातोकर साहब, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस समय अमरावती से टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। आप भारतीय जनसंचार संस्थान पश्चिमी क्षेत्र के निदेशक हैं अमरावती में और पीटीआई के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे। विदेशों में भी आपने अफगानिस्तान से और श्रीलंका जैसे देशों से वहां पोस्टेड रहे और वहां से पत्रकारिता की, आपने तो लंबा अनुभव है। सातोकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
नमस्कार जी, नमस्कार।
शुरुआत आपसे हम उसी चिंतन से कर चाहेंगे। तिलक ने जो उनके दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रकाशन रहे, केसरी के रूप में और द मराठा के रूप में, जिसे हम जानते हैं केसरी तो मराठी में ही था, द मराठा जो है अंग्रेजी में, तो इनका उनके राजनीतिक चिंतन में या उनकी यात्रा में क्या भूमिका रही है, क्या स्थान रहा है?
एक आपसे कहना चाहूंगा मैं कि अखबारों की भूमिका जो तब थी आज भी एक ही रहेगी, भाई लोगों को इन्फॉर्म करना है और एजुकेट करना है, शिक्षित करना है और एंटरटेन भी करना है। उस जमाने में आप एक सोचें, 100-125 साल पहले की बात है, जब इतनी लिटरेसी जिसको हम कहें कम थी, अखबार पढ़ने वाले भी कम थे, मगर तिलक जी का आप समझ सकते हैं कि उनको मालूम था कि ये कितना प्रभावी एक माध्यम है, प्रभावी एक हथियार है जिसके जरिए वो अपनी बातें लोगों के साथ में पहुंचा सके। जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ के और लोगों से बात करके, ये तिलक जी समझते थे कि भाई इसका प्रभाव कितना है अखबारों का
जी।
आप एक समझे कि मराठी और अंग्रेजी, मराठी इसलिए कि महाराष्ट्र है, मराठी लोगों से उनको बातचीत करनी थी अखबारों के जरिए, और अंग्रेजी इसलिए कि अंग्रेजों जो सरकार थी, अंग्रेज जो अफसर थे, उन तक भी ये बातें पहुंचे। जो इश्यूज तिलक ने तब उठाए, आपको एक बार जरूर कहूँ कि जो अग्रलेख उन्होंने लिखे, संपादकीय उन्होंने लिखे, वो कितनी तिलक जी की दूरदृष्टि रही होगी कि जो टिप्पणियां उन्होंने की वो आज अगर हम पढ़ें तो मुझे तो लगता पढ़ना चाहिए, और जो टिप्पणी उन्होंने की ऐसी लगेगा पढ़ने वालों को कि कहीं वो आज जो हो रहा है उसके बारे में तो बात नहीं कह रहे
जी।
तो पहले तो हम इसी की बात करें कि भाई स्वतंत्रता जो आंदोलन शुरू हुआ और तिलक जी को कहा जाता है कि तिलक जी को असंतोष का जनक कहा जाता है कि शुरुआत उनके जनरेशन ने की, आगरकर जी और लोकमान्य जी ने, उसमें ये दोनों अखबार का उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से तरीके से उसका इस्तेमाल किया लोगों तक पहुंचने के लिए।
देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि उनके एडिटोरियल या उनकी टिप्पणियों को अगर पढ़ा जाए या जाना जाए तो वो उससे पता लगता है कि कितनी गहराई और कितना दूरदृष्टि उनके लेखन में भी उनके कलम में भी थी। कुछ ऐसे उदाहरण अगर आपको याद हो अगर आप साझा कर सकें।
हाँ, एक चीज आपको कहूंगा कि जो उन्होंने टिप्पणी एक इतने में पढ़ा पढ़ने में आया मुझे जो एक उन्होंने संपादित लिखा था और उन्होंने काफी काफी एजुकेशन के बारे में आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, नई पॉलिसी जो सरकार ने अभी अनाउंस की उसके बारे में तिलक जी ने उस जमाने में जो लिखा कि भाई ये कोई फैक्ट्री नहीं है प्रोडक्ट निकाल लेके भाई बच्चे निकले, काफी उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज किया था। ये जो नीति है सरकारी नीति जो बाबू तैयार करने का आप उस पर से आप समझ सकते हैं। और उसके बाद में आप और एक कहूँ उदाहरण के तौर पे कि तिलक जी के ऊपर जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लिखा था लिखते जा रहे उसी के कारण उनके विरुद्ध सरकार ने तो केस लगाया था।
जी जी दो दो बार। हाँ, बिल्कुल
देशद्रोह का केस लगा था। तो आप समझ सकते हैं कितनी ताकत होगी उनके कलम में। एक बात कहना चाहता था मैं कि जो मैं मुंबई में था तो हाईकोर्ट कवर करता था मैं, तो वहां पे जाके तो मैं एक बार मतलब कितना 10 मिनट खड़ा रह गया जो कोर्ट रूम में तिलक जी की ट्रायल हुई थी अभी भी है।
अच्छा।
कोर्ट रूम अभी भी है, वहां पे बाहर में एक ये प्लाक लगा हुआ है जिसपे लिखा है उन्होंने कि तिलक जी को उन्होंने वो केस के बारे में पूछा, ज्यूरी ने पूछा कि आपके आप तो केस हार गए आपको सजा होगी मगर आपको कुछ कहना है क्या, तो उनका जो जवाब है उसके ऊपर कि भाई आपसे भी ऊपर कोई दैवी शक्तियां ऐसी है जो शायद ये चाहती होंगी कि जो जो जिस कार्य को मैंने लिया हुआ है वो कार्य मेरे जेल में रहते हुए ही बढ़ेगा।
क्या बात है।
ये जो पढ़ा मैंने जनरल जी तो मतलब मैं तो वहां पे पढ़ के मतलब खड़ा हो गया मतलब आई लॉस्ट यू नो आई स्टूड देयर। ये भी आदमी का कमाल है, इतनी बड़ी उनकी सोच थी। उनका कहना था कि भाई ये स्वतंत्रता को हमने प्रायोरिटी देना चाहिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ना कि समाज सुधार की जो आगरकर जी कहते थे कि भाई समाज सुधारे हम पहले और बाद में भाई स्वतंत्र होने के लायक हम है कि नहीं, ये एक दूसरा प्रभाव था। मगर तिलक जी ये इस पे बड़े बड़े पक्के थे कि नहीं हमको स्वतंत्रता पहले चाहिए, समाज सुधार जो है ये तो चलते रहेगा, ये तो चलने वाली बात है, ये कहीं रुकने वाली बात है नहीं।
ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण थी और इसमें शिक्षा को उन्होंने बहुत महत्व भी दिया था और उनका ये मानना था कि हमें स्कूलों में या शिक्षा में अलग अलग स्तरों पर नैतिक शिक्षा को जरूर शामिल करना चाहिए ताकि एक समाज या राष्ट्र जो बने उसका एक नैतिक आधार हो, उसमें मजबूती हो। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह का बिखराव हम देखते हैं बहुत तरफ, वो चाहे पाश्चात्य शिक्षा का असर हो या और कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन वो बात सच लगती है तिलक की कि हमें नैतिक आधार या नैतिकता की नींव पर समाज को खड़ा करना चाहिए, राष्ट्र को खड़ा करना चाहिए।
ये बिल्कुल आपने सही बात कही, सोसाइटी बनाने में समाज बनाने में उसका जो फाउंडेशन हम कह सके वो अच्छा हो सही हो नैतिक हो, ये बिल्कुल सही आपने बात की। एक ही मैं उसके मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि बचपन में हम जो तिलक पढ़ते हैं
जी,
जो तिलक हमें पढ़ाया जाता है उसमें अगर तिलक आज रहते तो मुझे नहीं मालूम था उनका तो उसका उसके ऊपर क्या कहते। स्वतंत्रता के बारे में, शिक्षा के बारे में, गणित के बारे में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कैसी हो, परीक्षा कैसी हो, उसमें शिक्षण प्रणाली क्या हो, उससे क्या होगा, उससे देश का भवितव्य कैसी बनेगा, ये चीजें अगर हमारे शिक्षक और विद्यार्थियों को भी पढ़ाई कैसे करना चाहिए। उस जमाने में इतना आसान नहीं था, पढ़ाई करना आसान नहीं था, मगर उनकी जो कीर्ति थी, उनके जो विचार थे, उनकी जो ताकत थी, उनके जो कलम के जो उतरे जो संपादकीय थे
जी,
ये काफी दुनिया में तिलक का जो अंतर्राष्ट्रीय जो उनका परिचय है ये अभी तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। उसके ऊपर विचार होना चाहिए, उसके ऊपर जनता को अभी भी बताने की जरूरत है।
देखिए एक बात है सातोकर साहब की, मुझे ये उत्कंठा भी हुई और थोड़ी सी ये ग्लानि भी कहीं ना कहीं हुई कि हम आज तक तिलक के बारे में जानते कितना है। सिर्फ ये है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं लेकर रहूंगा, ये उनका नारा था, या वो लोकमान्य कहे जाते हैं, या एक दो और छोटी मोटी चीजें हम जानते हैं। और तिलक को पढ़ते और जानते हुए इस प्रक्रिया में मुझे ये महसूस हुआ कि तिलक को जानने का मतलब सिर्फ तिलक तक ही जानना सीमित नहीं है। बाल गंगाधर तिलक को जानने का मतलब ये होता है कि हम अपनी पुरानी विरासत, परंपरा, अध्यात्म दर्शन, चिंतन, उन सबसे भी परिचित होते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अपने लेखन से, वक्तव्यों से, अपने भाषणों से, अपने कृतित्व से जन जन तक पहुंचाया है। या उनका अगर गीता रहस्य की अगर हमें बात करें तो देखिए उसमें कितने गहन और नए परिप्रेक्ष्य में, नए परिदृश्य में उन्होंने पूरी व्याख्या की है गीता की, श्रीमद् भगवद् गीता की। तो ये बहुत जरूरी है और इस बातचीत का उद्देश्य भी यही है कि हम हर चीज तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर थोड़ा सा कहीं से कोई उनको, उनके मन में उत्सुकता हम जगा पाए ताकि वो और ज्यादा जाने ऐसे महापुरुषों के बारे में, तो सचमुच सार्थक होगा हमारा ये प्रयास। आपका बहुत बहुत आभार विजय सातोकर साहब हमसे बातचीत करने के लिए।
नमस्कार।
तो श्रोताओं, ये थे अमरावती महाराष्ट्र से विजय सातोकर साहब, वरिष्ठ पत्रकार। आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने काफी सारी बातें की हैं, लेकिन ये एक छोटा सा अंश है उनके व्यक्तित्व और उनके योगदान को लेकर। बहुत कुछ है जो हमें अपने अपने स्तर पर उनके बारे में या उनके जैसे महापुरुषों या उनके जैसे महान विभूतियों के बारे में हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, आज के प्रोग्राम को हम यहीं विराम देंगे, लेकिन उसके पहले अनु बड़जात्या ने एक मेल हमें भेजा है पिछले कार्यक्रम को लेकर। अनु ने लिखा है कि पोस्टबॉक्स प्रोग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोग्राम मन की बात को डिटेल से जानने को हमें मिलता है। हथकरघा हैंडलूम की जानकारी जो मिली पिछले कार्यक्रम में, जैसे एक साड़ी बनाने में एक महीने तक का समय भी लग जाता है, उसमें लगने वाले तार 5 रुपए के भी होते हैं और 500 रुपए के भी होते हैं, ये सब जानना बहुत रोचक था। इस समय बुनकरों की स्थिति सुनकर बहुत दुख हुआ। अनु, बहुत अच्छा लगा कि आपने उस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के जरिए भेजी है। हमारे बाकी श्रोता भी आज के कार्यक्रम को लेकर भी अगर आपके मन में कोई ख्याल आता है तो हमें जरूर आप ईमेल कर सकते हैं। postbox@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। एक बार फिर से बता देता हूं, postbox@gmail.com। आप जरूर हमें अपने विचार लिखकर भेजिएगा। फिलहाल आज के लिए अब जैनेन्द्र को अनुमति दीजिए। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह।
पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
अच्छे काम केवल अच्छे साधनों से ही हो सकते हैं। अपवित्र साधनों से हम कभी अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते। 8 जून 1947 को अपने प्रवचन में बापू ने इसी बात को कुछ इस तरह समझाया।
अच्छा काम करना है तो वो भी अच्छे साधनों से ही करे तो अच्छा हो सकता है, अगर बुरे साधनों से वो करे तो नहीं हो सकता है। कोई किसी ने कुछ सुना है कभी भी, और सुना है तो मैं कहता हूँ उन्होंने झूठ सुना, कि ईश्वर को हम पा सकते हैं अनुचित साधन देकर, अपवित्र नापाक साधन से। ईश्वर को पाना है तो साधन भी ईश्वर को पाने के लायक होना चाहिए। अगर बुरी चीज को पाना है तो उसमें साधन पाक हो नहीं सकते, उसमें नापाक साधन होने वाले हैं। ये एक जगत का कानून है, उस कानून के मुताबिक आप चले, मैं चलूं, सारा जगत चले, तो हमारा काम सीधा हो जाता है।
This is All India Radio. The news read by Reshma Tiwari. The National Cadet Corps NCC is all set for a major expansion to cover 173 border and coastal districts in the country. Defence Minister Rajnath Singh has approved a proposal of the National Cadet Corps for a major expansion scheme to meet the aspirations of youth in all the border and coastal districts. The proposal of the scheme was announced by Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day address yesterday. A total of 1 lakh cadets from 173 border and coastal districts will be inducted to the NCC. One-third of the cadets would be girl cadets. Our correspondent reports more than 1,000 schools and colleges have been identified in border and coastal districts where NCC will be introduced. The NCC expansion plan will be implemented in partnership with the states. Nation is remembering former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his second death anniversary today. The BJP stalwart breathed his last on this day in 2018. President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other senior leaders, visited former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's Samadhi, Sadaiv Atal, in the national capital today. They paid floral tributes to the leader on his second death anniversary. India has called for real-time information sharing among BRICS nations to tackle the drug menace. The fourth meeting of the BRICS Anti-Drug Working Group was held recently. The meeting focused on misuse of darknet and other advanced technologies for drug trafficking. Working group comprising Brazil, Russia, China, South Africa and India held fruitful discussions. The Indian delegation was led by Rakesh Asthana, Director General, Narcotics Control Bureau. The common points emerged during the discussions include need for real-time information sharing among the member states and need to curb increased drug trafficking through maritime routes. The growing economic might of BRICS countries, their significance as one of the main driving forces of global economic development, their substantial population and abundant natural resources from the foundation of their influence on international scene, among other areas of collaboration, matters pertaining to drug trafficking is an important area of cooperation among the BRICS member states. Micro, Small and Medium Enterprises Minister Nitin Gadkari has said that MSME sector plays a major role in the development of the country. Speaking at Swavalamban E-Summit 2020 in New Delhi today, through a video conference, Mr. Gadkari said, till now, 11 crore jobs have been created in the micro, small and medium enterprises, MSME sector, and in the next 5 years, government aims to create 5 crore more jobs in the country. He said 48% of export in the country are from MSME sector and government aims to take this export to 60%.
हमारे देश के ग्रोथ में हमारे MSME सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से 30% इनकम जो है वो एमएसएमई से आता है। हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई का है और अभी तक हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं और अब मेरा विश्वास है कि हम इसी मर्यादा को बढ़ाकर आने वाले 5 साल में हम कम से कम ये जो 30% एमएसएमई की ग्रोथ है इसको हम 50 तक लेके जाएं।
Rajya Sabha Secretariat has been working overtime for the last 2 weeks to ensure full preparedness by the third week of this month for the forthcoming monsoon session of Parliament. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu and Lok Sabha Speaker Om Birla directed to ensure all arrangements to be in place by the third week of this month for testing, rehearsal and final inspection. As per the arrangements, Rajya Sabha Chamber and Galleries and Lok Sabha Chamber will be used for seating the members of the House during the monsoon session. Rajya Sabha Chairman has also directed the Secretariat officials to minimize the need for the members to physically handle various papers by ensuring necessary arrangements. Government of India has dispatched over 30 tons of technical equipment and material to Mauritius. In a statement, Ministry of External Affairs said, the decision has been taken in response to a request of the government of Mauritius for assistance in dealing with the environmental crisis due to oil spill on its southeast coast. A 10-member technical response team consisting of Indian Coast Guard personnel, specially trained to deal with oil spill containment measures, has also been deployed to Mauritius. The ministry said, India's assistance is in line with its policy to extend humanitarian assistance and disaster relief to its neighbours in the Indian Ocean region, guided by the Prime Minister's vision of Sagar, security and growth for all in the region. The sustained decline in the COVID-19 fatality rate in the country has made India as one of the countries with lowest COVID-related mortality across the world. The fatality rate stands at 1.93% in the country. Union Health Ministry said this is a result of coordinated efforts of the centre, state and union territory governments, which has led to a continuous decline in the mortality rate. USA has crossed 50,000 deaths in 23 days, Brazil in 95 days and Mexico in 141 days, while India took 156 days to reach this national figure. Over 53,000 people in the country got cured and returned to their homes in the last 24 hours. With this, the cumulative recoveries from COVID-19 in the country inched further closer to touch the 2 million mark. So far, a total of 18,62,258 people have recovered in the country, and with this, the nationwide recovery rate now stands at 71.61%. The Health Ministry said 63,489 new cases of COVID-19 have been registered in the country in the last 24 hours, taking the total number of cases to 25,89,682. Presently, the total number of active corona cases in the country is 6,77,444. In a single day, 944 deaths have also been reported, taking the toll to 49,980. This is All India Radio giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our Twitter handle @AIRNewsAlerts. The pilgrimage to Sri Mata Vaishno Devi Shrine Temple resumed today after remaining suspended for nearly 5 months in view of the coronavirus pandemic. The yatra was suspended on March 18th this year. As per the SOPs, every pilgrim has to wear a face mask and face cover and install Arogya Setu app on his or her mobile phone. Pilgrims will also have to undergo thermal scanning at yatra entry points. At the base camp in Katra, the devotees are coming in small numbers today but are excited with the start of the yatra after a gap of 5 months.
As per the SOPs, every pilgrim will have to wear a face mask and face cover and install Arogya Setu app in his mobile phone. Pilgrims will also have to undergo thermal screening at yatra entry points. At the base camp, Katra, the devotees are coming in small number today but are excited with the start of the yatra after a gap of 5 months. Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board has said that during the first week of the resumption of the pilgrimage, there shall be a ceiling of 2,000 pilgrims per day, including including 1900 from Jammu and Kashmir and the remaining 100 from outside the UT. Children below the age of 10 years, pregnant women, persons with morbidities and persons above the age of 60 years have been advised to avoid the yatra in the interest of their own safety from infection of COVID-19. The COVID-19 negative test report of the pilgrims from outside the UT and also from red zone districts of J&K will be checked at the helipad and yatra entry points. Only those with negative reports will be allowed to move beyond towards the Bhavan. Gulshan Rana, AIR News, Jammu.
In the massive landslide that hit Rajamala in Idukki district in Kerala a week ago, two more bodies were recovered today, taking the death toll in the mishap to 58. Search operations are on in the region for the missing 12 persons. In Maharashtra, the incessant rains in Sangli since last 3 days has led to the rise in water level in Krishna River. Due to the surge in water level, people residing on the riverine have been shifted to safer locations by the local authorities. Officials said emergency machinery has been kept on alert. As a precautionary measure, water is being released from Koyna and Varna dams. In Telangana, incessant rains lashed several parts of the state, inundating low-lying areas at many places. The Parsi New Year, also known as Navroz, is being celebrated today. The festival is widely celebrated by Parsi community around the world. People clean and decorate their homes, dress up in traditional attires, and visit fire temples to pray for their prosperity. President Ramnath Kovind, Vice President M. Venkaiah Naidu, and Prime Minister Narendra Modi have greeted the people on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people in the country and abroad in the Mann Ki Baat program on All India Radio on the 30th of this month. And that is the end of this news bulletin.
जंगल जंगल फिर बात चली.
All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart.
तो आप जानना चाहते होंगे कि आज कौन सी कहानी हम आपके लिए लेकर आए. इंतजार खत्म हुआ. आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कहानी द कर्स ऑफ मितविंद. और ये कहानी आपको सुना रहे हैं संजय हेलोन.
Once upon a time, long, long ago, there was this tiny monastery on top of this tiny hill in a tiny village. In this monastery lived many bhikshus and also a very happy monk. He had not a care in this world, as every time he stepped out for alms or bhiksha, his bowl will be filled by the village rich man. Because of this, the monk was happy and contented and free to practice his monk's deeds and to meditate and chant. Early one morning, as a happy monk went about his duty of waking up his fellow monks, jingling his bunch of keys, he happened to look down the hillside. What did he see? A new face that was a pleasant and calm of an elderly monk, perhaps from another land. So as this monk was entering the village rich man also saw this unknown monk and was impressed with his calm attitude and gentle manners. He decided to invite this elderly bhikshu to his home. "Why don't you take shelter at the village monastery, O bhikshu?" he said. "I will also visit you there this evening to make sure that you are comfortable." The perfect monk gracefully accepted the invitation and reached the monastery, where he was pleasantly greeted by the happy monk, who showed him to his room. The elderly monk passed his afternoon in meditation. In the evening, the rich man arrived with fruits, flowers, lamp oil in the honor of this visiting holy man. He greeted the perfect monk and requested him to talk about the way of the truth as taught by the Buddha. Later, as it grew dark, he lit the lamps and offered the flowers at the monastery's lovely temple shrine and also invited both the monks for the lunch the next day. You think everything is going so well in this story, but a terrible thing happened. You know this little green monster called jealousy? The happy monk, who had been so contented, allowed the poison of the jealousy to creep into his mind. The happy monk stopped being happy, chewed his nails, and lost his good night's sleep. He could see that the village rich man had a very high regard for this new monk. What will happen if he stays back in this monastery? My supporter may stop caring for me. Will I still get this secure roof over my head and a bellyful of lunch every day? I must make sure that this new monk does not stay. I must think of a plan. I must get rid of him. Late that night, before retiring to their rooms, both monks met again. Though the elderly monk spoke in his usual friendly and compassionate way, the younger monk would not speak to him. Things had changed. The elderly monk was both very perceptive and wise. He understood that the monk was perhaps jealous and resentful. He thought, he's still very young. He does not understand. I am free of any desire to remain here or leave. The next morning, the young monk's duty was to ring the temple gong loud and clear when it was time to go collect alms. But he had a different and a hideous plan. He rang the gong so gently that even the birds in the courtyard could not hear. He also knocked the door of the visiting monk's room very lightly. Having completed his courteous duty in this tricky way, he went alone to the village rich man's home to collect alms. The village rich man bowed respectfully and asked the young monk, "Where is our august guest?" The young man wanted to poison the rich man's ears. He said, "I have not seen him today. I rang the gong, knocked at his door, but he did not appear. Perhaps he was not used to this rich food and is still asleep, digesting his big meal and dreaming of his next feast." Meanwhile, back at the monastery, the elderly perfect monk awoke, cleaned himself, put on his robe, prayed, and then calmly departed from the monastery for his new journey. Whilst in the village, the rich man fed the young monk a delicious meal. When the monk had eaten his fill, the rich man took his bowl, scrubbed it clean, and filled it up again with the same wonderful food to be taken back to the elderly bhikshu. Though the young monk accepted the generous gift for the other, his mind was completely taken over by jealousy. After thinking of pros and cons of different ways of getting rid of this food, he finally threw the arms on hot burning coals and it burned up without a trace. But with that, he had also thrown away his peace of mind. For when he got back to the monastery, he found the visitor gone. "What have I done? I'm afraid something terrible will happen to me." For the rest of his life, though the rich man continued to support this monk, his mind was filled with torment and suffering. Even when he died, his torment continued many cycles of death and rebirth. Finally, he was fortunate to be reborn as a human again. But in the poorest of the poor beggar families of the holy city of Kashi, he was given the name Mithavinda. As it seems, Mithavinda's birth brought even more misery and poverty to the family, and finally one day, his parents beat him and chased him away for good. Poor Mithavinda had not known how lucky he was in that earlier life as a contented village monk. But he allowed the poison of jealousy and treachery to enter his mind. What he had feared, he invited into his life by his own actions.
The Curse of Mithavinda. अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसे सुना रहे थे संजय हेलोन. कैसी लगी आपको ये कहानी? और हाँ, आपको क्या लगता है कि इस जातक कहानी का मॉरल क्या था? मसलन हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें बताएंगे ना?
A presentation of the Central English and Hindi Features Units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. Jungle, jungle, phir baat chali.